कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस URL katha-path.blogspot.in।
सत्यनारायण पटेल की कहानी पर पाजेब न भीगे। एक किस्सा है और किस्सा क्या हकीकत है जी। कल की हकीकत आज किस्सा है, आज की हकीकत कल किस्सा होगी। तो किस्सा उन दिनों का है जब अब जैसे देश नहीं हुआ करते थे, तब देश का मतलब एक क्षेत्र हुआ करता था। जैसे आज मालवा में निमाड़ के लोग आते हैं और जब काम होने के बाद वापस जाते हैं तो कहते हैं देश जा रहे हैं, यानी जब मालवा भी एक देश था, निमाड़ भी एक देश था, झाबुआ भी एक देश था। हर क्षेत्र जिसकी बोली बानी अलग थी, रहन सहन पहनावा खान पान और संस्कृति में फर्क था, वो एक अलग देश था। तब भी एक देश से दूसरे देश में काम धंधा करने जाते थे लोग। किसी को पासपोर्ट वीजा अनुमति आदि की जरूरत नहीं होती थी, होती थी जरूरत तो बस इतनी की आता हो काम धंधा, व्यापार व्यवसाय करने की हो इच्छा, जहाँ जाते वहाँ की बोली भाषा भी सीख लेते ताकि काम धंधा करना आसान हो सके। लोग ऐसे ही करते थे व्यापार व्यवसाय, बड़े बड़े हाट भरते, कई कई दिन चलते मेले। हाट और मेलों में अलग अलग जगहों की संस्कृति बोली घुलती मिलती, लोगों में दोस्ती प्रेम और कई तरह के संबंध विकसित होते। अभी भी होता है वही सब, लेकिन स्वरूप बदल गया है। फिर जैसे जैसे बहने लगी विकास की गंगा, रीति रिवाज रहन सहन भाषा बोली और सब कुछ में बदलाव होना शुरू हुआ। बरस बीतते रहे, बदलाव जारी रहा, गांव कस्बों में और कस्बे शहरों में और शहरों का शायद जंगल में बदलना जारी रहा। किस्सा उसी किसी जमाने में शुरू हुआ था। ये जाने कितने लोगों ने सुना सुनाया, समय बदला, लोग बदले, कहने का ढंग बदला, तो किस्से में भी आया ही होगा कुछ बदलाव। फिर भी जब किस्सा सुना तो ताजगी भरा लगा, मन फिर से वही किस्सा कहने को ललचा उठा। दरअसल किस्सा एक नहीं दो है, और पहला किस्सा कुछ यूं है। दूर कहीं किसी गांव में एक बंजारा था। था तो वो बंजारा, पर उसकी कद काठी गजब की ऊंची और तगड़ी थी, आकर्षक भी। उसके सांवले गालों पर डूबते सूरज का ललछवापन दमकता था, आंखें हल्की नीली और भूरी थीं। बोलता हंसता तो सफेद झक दांत बादामी और मजबूत मसूड़ों में आकर्षक ढंग से जमे हुए नजर आते थे। वो एक व्यापारी था। वो जिस गांव में रहता था उसके आसपास के 8-10 गांव के लोगों की जरूरतों का सामान उसी के पास मिलता था, इसीलिए उसका व्यापार व्यवसाय चलता भी अच्छा था। उसके इलाके का राजा भी एक बंजारा था। हालांकि राजा से उसकी दूर की भी राम राम नहीं थी। उस क्षेत्र में बंजारों के कई गांव थे, कबीले थे और घुमंतू टोलियां भी। जरूरी नहीं कि सभी राजा को जानते हों, लेकिन चिमनी लेकर ढूंढने पर भी कोई नहीं मिलता था जो उस बंजारे को नहीं जानता हो। कहने का मतलब इतना भर है कि बंजारे का किस्सा सेमल की रुई की तरह हवा में उड़ते उड़ते पूरे बंजारा प्रदेश देश में फैल गया था। हालांकि बंजारा इलाके में पहले से ही बहुत ठावा था। क्या है कि बंजारे का पैतृक काम ही था व्यापार। वो अपने व्यापारी माता पिता की इकलौती संतान था। माता पिता ने जिंदगी भर घूम घूम कर खूब धन दौलत कमाई थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने बेटे यानी बंजारे को भी व्यापार व्यवसाय सिखा दिया था। उसके रहने के लिए एक विशाल भवन बनवा दिया था। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत सारी धन दौलत रख छोड़ी थी। जब बंजारे के माता पिता बूढ़े हो गए और वो होशियार हो गया, तब एक दिन उसके माता पिता लंबी तीर्थ यात्रा पर रवाना हो गए और फिर वे कभी नहीं लौटे। कुछ बरस बंजारा माता पिता के आने की राह देखता रहा, उदास रहा, फिर धीरे धीरे वो व्यवसाय में डूबता गया। बंजारा उनकी चीजों के व्यापार के साथ नमक का भी बड़ा व्यापारी था। व्यापार में उसका हाथ बटाने के लिए कई नौकर चाकर थे। व्यापार में हर चीज में उसे अच्छा मुनाफा होता था, लेकिन नमक में उसे सदा ही घाटा होने की संभावना बनी रहती थी। घाटे की वजह थी एक नदी। नदी को पार करे बगैर कोई भी सामान नहीं लाया ले जाया जा सकता था। बाकी सभी सामान ठीक ठाक आ जाता, भीग जाता तो भी सुखाकर बेच देता, पर नमक हमेशा ही चिंता का विषय होता। क्योंकि जब बंजारा या उसके यहाँ काम करने वाले गधों पर नमक लेकर नदी पार करते, तो नदी पार करते वक्त नदी में इतना नमक गलकर बह जाता कि नदी का पानी खारा हो जाता। बहे हुए नमक का घाटा बंजारा बचे हुए नमक को महंगे दाम पर बेचकर ही पूरा करता। आठ दस गांव के लोग बंजारे के यहाँ सौदा लेने आते। लोग नमक के दाम को लेकर हमेशा किचकिच करते, पर बंजारा क्या करता, नमक घाटे में बेचने से तो रहा। पूरे क्षेत्र में बंजारे की नामोसी होती, लोग उसे जाने क्या क्या कहते, बद्दुआ देते। बंजारे के पास अच्छा भला घर बार था, पैसा कौड़ी थे, व्यापार व्यवसाय था, फिर भी वो कुंवारा था। बंजारे की उम्र शादी की योग्य थी, वो शादी करना भी चाहता था, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद उसका करीबी कोई नहीं था, उसे एक जीवन साथी की जरूरत थी। लेकिन नमक के दाम ज्यादा लेने की वजह से वो बदनाम था, इसलिए कोई उसे अपनी बेटी न देना चाहता था। लोग पैसा कौड़ी से ज्यादा ईमान और इंसानियत को तवज्जो देते थे। तब जब कभी बंजारा किसी की शादी होते देखता, उदास हो जाता। वो सोचता, क्या करूं, घाटा उठाकर लोगों को नमक देना शुरू करूं या नमक का व्यवसाय ही बंद कर दूं, या अपना गांव छोड़कर नदी पार किसी दूर गांव में बस जाऊं। लेकिन दूसरे गांव जाऊंगा तो फिर यहाँ के घर बार का क्या होगा, यहाँ इतना बड़ा घर तो कोई खरीद भी नहीं पाएगा, फिर ये सब छोड़कर कैसे दूसरे गांव में बस जाऊं, क्या मेरे माता पिता की वंश बेल मुझ तक ही रुक जाएगी, मैं उनके वंश को आगे कैसे बढ़ाऊं। लेकिन फिर कुछ दिन में उदासी छट जाती, बंजारा व्यापार व्यवसाय में जुट जाता। कभी कभी सोचता और लोगों से सलाह भी लेता, क्या करूं कि नमक न गले, कैसे कम दाम पर नमक उपलब्ध कराऊं। एक बार उसे एक बूढ़े बंजारे ने ही सलाह दी कि नदी पर बांध बना, जब नदी पर बांध बन जाएगा तब गधों पर लदा नमक तो ठीक, गधों के पैरों की खुर भी न भीगेंगे, नमक भीगेगा नहीं तो गलेगा नहीं, गलेगा नहीं तो बहेगा नहीं, बहेगा नहीं तो वाजिब दाम पर बेच सकेगा, वाजिब दाम पर बेचेगा तो कोई बद्दुआ नहीं देगा, कोई भला बुरा नहीं कहेगा, कोई न कोई अपनी बेटी भी तुझसे ब्याहने को राजी हो ही जाएगा। बंजारे को बूढ़े बंजारे की बात जच गई, उसने नदी पर एक बांध बनवाया। बांध बंजारा बांध के नाम से ही जाना जाने लगा। बांध बनाने के बाद बंजारे की शादी हो गई और वो सुखपूर्वक रहने लगा। अगर यही सही मान ले तो बंजारा का किस्सा यही समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंजारा बांध के पीछे एक किस्सा और है। गांव वाले कहते हैं कि बंजारा बांध बनवाया तो था बंजारा नहीं, लेकिन सिर्फ नमक लदे गधों के लिए नहीं बनवाया था। बांध बनवाने की ऊपरी कथा से अलग ज्यादा प्रामाणिक और लोकप्रिय किस्सा कुछ यूं है। एक बंजारा जो नमक का बहुत बड़ा व्यापारी था, व्यापार करने दूर दूर के देशों में जाया करता था। एक बार वो एक मेले में गया था। मेले में कई दुकानें लगी थी। बंजारे की दुकान के सामने एक बूढ़े बंजारे की दुकान थी। बूढ़े की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। नमक व्यापारी बंजारा देखने में अच्छा खासा और कुंवारा था ही, शादी के लिए एक बंजारन की तलाश में भी था। वो मेले का पहले ही दिन था जब बंजारे की नजरें बंजारन की नजरों से उलझ गई थी। वो बंजारन पर इस तरह लट्टू हुआ कि भंवरा भी लजाने लगा। व्यापार में उसका मन जरा भी नहीं लगता। उसकी नजरें हर समय सामने टिकी होती जहां बंजारन अपने पिता की मदद कर रही होती। बंजारे के साथ काम करने वाले नौकर चाकर भी नजरों के खेल से वाकिफ हो गए थे। फुर्सत की घड़ी में वे भी खेल देख आपस में हंस बोल लेते। बंजारे और बंजारन की दुकानों के बीच से खरीददार लोगों का आना जाना चलता रहता। नमक खरीदने वाला बंजारे की दुकान से खरीदता, नौकर ही तौल मौल करते, वही हिसाब किताब करते। जेवर खरीदने वाला बंजारन की दुकान से ही खरीदता, बंजारन के पिता और नौकर ही सब कुछ संभालते। उन दोनों के बीच चलते नजरों के खेल को बूढ़े ने भी भांप लिया, लेकिन बेटी को कुछ नहीं कहा। सोचा, जवान छोरी है, शादी की उम्र है, मैं तो व्यापार व्यवसाय में उलझा रहा, छोरी की उम्र का ख्याल ही न रहा। फिर सामने की दुकान वाला भी व्यापारी है, पहनावे और नाक नक्श से भी बंजारा ही है, देखने में भी अच्छा खासा है, अच्छा है, छोरी को पसंद आ जाए तो दोनों की शादी कर देंगे। मेले के दिन पर दिन बीतने लगे। उन दोनों के बीच बातचीत होने लगी। दोनों साथ साथ मेले में घूमते, खाते पीते, मन की बातें करते। फिर जब मेला समाप्त होने को आया, व्यापारी अपनी अपनी दुकानें समेटने लगे, कुछ जाने भी लगे, तब बंजारे ने बंजारन से कहा, मैं तुमसे बेहद प्रेम करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। बंजारे ने ये बात अकेले में नहीं कही थी, बल्कि बंजारन के पिता की मौजूदगी में कही थी। पिता सुनकर मन ही मन खुश हुए, पर कुछ बोले नहीं। اس کے پتا بوڑھے ضرور تھے پر دکیانوسی نہیں تھے، نہ اپنی مرضی کو بیٹی پر تھوپنا پسند تھا انہیں۔ انہوں نے سوچا چھوری ہوشیار ہے، اسے جو صحیح لگے گا وہی جواب دے گی، چھوری کا نرنے ہی میرا بھی نرنے ہوگا۔ بنجارن نے پہلے اپنے پتا کی طرف دیکھا، پتا کے چہرے پر بھروسے کی چمک تھی، پھر اس نے بنجارے کی طرف دیکھا اور بولی، سن بنجارے، اپنے بیچ اتنے دن جو کچھ ہوا اس کی مدھر اسمرتی اپنے من میں رکھ اور شادی کا خیال بھول جا۔ کیوں، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ بنجارے نے ویاکل سور میں پوچھا اور آگے کہا، میں تمہارے بغیر آگے کا جیون نہیں جی سکوں گا، مجھے نیند میں بھی تمہاری پازیب کے گھنگروں کی آواز سنائی دیتی ہے، تمہاری صورت اور مت سے آنکھیں سدا ہی میری آنکھوں میں بسی رہتی ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بنجارے، پر پھر بھی میں تمہارے گاؤں نہیں چل سکتی ہوں، بنجارن نے کہا، کیونکہ تم رہتے ہو ندی کے اس پار اور میں اس پار، تمہارے گاؤں جانے کے لیے ندی چل کر پار کرنی پڑتی ہے اور کوئی سادھن نہیں ہے، میں اس ندی کو بھیگتے ہوئے پار نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تم مجھ سے شادی ہی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ شرط؟ کیا شرط ہے؟ بنجارے نے بے صبری سے پوچھا اور بغیر کچھ بچارے آگے بولا، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ بنجارے اتاولے مت ہو، پہلے میری شرط سنو، بنجارن نے کہا، اور ہاں شرط یہ ہے کہ تمہیں اس ندی پر ایک باندھ بنوانا ہوگا، باندھ ایسا بنے کہ پیروں کی پگتھلی تو بھیگے پر پازیب نہیں بھیگے۔ اگر تم میری یہ شرط پوری کرو گے تو میں خوشی خوشی تمہارے گاؤں چلوں گی، تم سے شادی کر لوں گی، اور اگر باندھ پار کرتے وقت پازیب بھیگے تو جہاں بھیگے گی اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گی، واپس اپنے مائکے لوٹ آؤں گی۔ ہاں تمہیں شرط منظور ہو تو بولو، ورنہ جو کچھ اپنے بیچ ہوا اسے بھول جاؤ۔ بنجارے کو تو بنجارن کے سوا کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا، اس نے باندھ بنوانے کی ترنت ہامی بھر لی تھی، لیکن نوکر چاکروں کا دماغ چکرا رہا تھا، بھلا کوئی ایسا باندھ کیسے بن سکتا ہے جس میں پگتھلی تو بھیگے پر پیروں کی پازیب نہیں بھیگے؟ باندھ پر پانی کا کیا بھروسہ، کبھی کم بہے کبھی زیادہ۔ چنتا میں تو بنجارا بھی پڑ گیا، کیسے بنے گا ایسا باندھ، ہر سمے دماغ در در بھٹکنے لگتا، اپنے پرن کو پورا کرنے میں پران سوکھنے لگے۔ کسی نے کہا، نہ ہو پورا پرن تو نہ ہو، پرن کے پیچھے پران دینے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے کہا، جیسا چاہا بنجارن نے نہ بنے ویسا، تو کم سے کم ایسا تو بن ہی جائے گا کہ جب گدھوں پر نمک لے کر نکلیں گے تو نمک گل کر نہ بہے گا۔ بنجارا سن سبھی کی رہا تھا، لیکن ذہن میں ایک ہی دھن سوار تھی، جلدی سے جلدی وہ باندھ بنوائے جس پر چل کر بنجارن گھر آوے۔ بنجارن کی شرط اور بنجارے کی پرن کی خبر اس کے گاؤں کے آس پاس کے سبھی گاؤں میں پھیل گئی۔ فرصت کے کھڑ ہو یا نہ ہو، لوگوں کی زبان پر بنجارے اور بنجارن کی ہی بات ہو، کچھ لوگوں کے من میں بھی اس بنجارن کو دیکھنے کی لالسا جاگ اٹھی، کچھ لوگوں کے من میں ایسا انوکھا باندھ دیکھنے کی اچھا مچلنے لگی۔ لوگ بھی سوچنے لگے، بنجارا آخر کیسے بنوائے گا ایسا باندھ؟ کوئی ہنسی مذاق میں کہتا، میں تو اس بنجارن کی پازیب دیکھنا چاہتا ہوں، آخر کیسی ہے وہ پازیب جس کی خاطر اس نے بنجارے جیسے ویاپاری کے سامنے ایسی شرط رکھی؟ ایسی پازیب کو جن پیروں میں پہنا ہوگا وہ پیر کیسے ہوں گے، اور جس کے پیر ایسے ہوں گے وہ بنجارن کیسی ہوگی؟ وقت بیتنے لگا، بنجارے کا پرن دن پر دن درڑ ہوتا گیا۔ ایک دن بنجارے نے ندی پر باندھ بنوانے کا کام شروع کر دیا۔ وہ باندھ بنوانے کا کام صرف مزدوروں سے نہیں کرواتا تھا، بلکہ خود مزدوروں کے ساتھ مل کر کرتا تھا۔ لوگ دیکھنے آتے کہ آخر باندھ کو کیسے بنایا جا رہا ہے۔ باندھ بنتے بنتے ہی خوب پرسدھ ہو گیا تھا، اور جب ایک دن باندھ بن کر پورا ہو گیا تو بنجارا پھر بنجارن کے پاس گیا اور گاؤں چلنے کا نویدن کیا۔ بنجارن نے بنجارے کے بارے میں خوب سنا تھا، وہ اسے دیکھ کر من ہی من بھاوک ہو رہی تھی کہ اس کے شرط کو پوری کرنے کی خاطر بنجارے نے خوب محنت کی ہے، لیکن اس نے اپنی بھاونا کو آنکھوں اور چہرے سے جھلکنے نہیں دیا۔ وہ پرکٹ روپ سے درڑ سور میں بولی، بنجارے تو کہیں شرط تو نہیں بھول گیا؟ بنجارے نے گردن ہلا کر کہا، نہیں، تمہاری شرط اور اپنا پرن یاد ہے مجھے۔ من ہی من بنجارن بھی چاہتی تھی کہ بنجارے کی محنت سفل ہو جائے۔ बंजारे से शर्त लगाने के कुछ माह बाद बंजारन के पिता चल बसे थे। वो अकेली रह गई थी, घर में माँ या कोई भाई बहन नहीं थे। अब वो भी घर बसाना चाहती थी, लेकिन बंजारे से शर्त लगाने के बाद वो बहुत ठावी हो गई थी। लोगों से उसे ताने भी खूब सुनने को मिलते थे, लेकिन अब बंजारन अपनी शर्त से अपनी बात से पलट नहीं सकती थी। पलटने पर भारी बदनामी होती। उसने एक बार फिर अपनी शर्त दोहराई, जहाँ पाजेब की एक घूंघरी भी भीगी, वहीं से मैं लौट आऊंगी। तुम या कोई भी मुझे रोकने या तुम्हारे साथ चलने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा। बंजारे ने कहा, ठीक है, तू जैसा कहती है वैसा ही होगा। मैं तेरे मान की रक्षा अपने प्राण की बाजी लगाकर करूंगा। बंजारन ने कहा, तो ठीक है, आज तुम भी यहीं रुको, आराम करो, कल सूरज उगते ही चल देंगे। जब बंजारन के गांव और घर पहुंचा था बंजारा, तो गांव में हलचल मच गई थी। लोग बंजारे की एक झलक देखने को बावले होने लगे। बंजारन के घर सामने लोगों का हुजूम देखते ही बनता था। कुछ लोग बंजारे के साथ भी गए थे। बंजारन ने अपने नौकर चाकरों से कहा, आज पूरे गांव के लोगों के लिए बढ़िया पकवान बनवाओ, सभी को खिलाओ। बंजारे के साथ पधारे लोगों की भी विशेष खातिरदारी हो, उनके रुकने और आराम का उचित प्रबंध हो। खान पान के बाद हमारी संस्कृति रीति रिवाज के मुताबिक मनोरंजन गीत संगीत का इंतजाम हो। बंजारन को किसी चीज की कमी तो थी नहीं। उसके नौकर चाकर झटपट जुट गए, सभी प्रबंध चटपट कर दिए गए। लोगों ने छक्कर पकवान झाड़े, खूब नाच गान हुआ, फिर बढ़िया आराम किया। सुबह सभी बंजारे और बंजारन को बांध तक विदा करने को तैयार होने लगे। बंजारन भी सजने संवरने लगी। कैसा गजब तो खिला खिला बंजारन का रूप था और पहनावा, आहा, नौकली का घेर वाला रंग बिरंगा और छींटदार घाघरा, चटक रंग, बड़े बड़े छापे और सितारों जड़ी झीनी झीनी लुगड़ी, कई रंगों की कांचली, कांचली घाघरा और लुगड़ी के किनारों पर जैसे सोने के तार से सिवन की हो, कांचली के कस में झूलती सोने चांदी की घुंघरियां, गले में एक से एक जेवर, बाजू में बाजू बंद, कमर में कमर बंद, कलाई में कड़े और चूड़ियां, उंगलियों में हीरे मोती जड़ी सोने की अंगूठियां, नाक में नथनी, कान में टोंटी रिंग, माथे का बोर और पैरों की पाजेब। ओहो, क्या श्रृंगार था, जिसकी जहां नजर पड़ जाए बस उम्र वहीं हिलगी रह जाए। बंजारा और बंजारन को देखने गांव गांव से बांध के दोनों तरफ लोग जमा होने लगे थे। बंजारे और बंजारन के पहुंचने से पहले भीड़ बांध को निहारती, कोई बांध के बारे में तो कोई बंजारे और बंजारन के बारे में बात करता। अटाटूट भीड़ की आंखों में प्रश्न थे, क्या होगा जब बंजारन चलकर बांध पार करेगी? क्या केवल उसकी पगथली ही भीगेगी और पाजेब न भीगेगी? क्या बंजारन पाजेब भीगने पर भी बंजारे के साथ चली आएगी? क्या बंजारन लौट जाएगी? क्या बंजारा अपनी असफलता को बर्दाश्त कर सकेगा? कहीं निराश होकर नदी में छलांग तो न लगा देगा? कहीं सदमे से खड़ा खड़ा सूख तो न जाएगा? जब भीड़ ऐसे ही प्रश्नों में उलझी थी, सूरज आंखें खोलने लगा था, पक्षी उड़ते निकल पड़े थे। बंजारन और बंजारा भी बांध की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें आता देख वहां जमा हुए लोगों की बेसब्री बढ़ने लगी, क्या होगा, पाजेब भीगेगी या नहीं? कुछ लोग आपस में शर्त लगाने लगे। कोई कहता, अगर पाजेब नहीं भीगी तो मैं अपने चार जोड़ी घोड़े हार जाऊंगा। कोई कहता, अगर पाजेब भीगी तो मैं अपनी तीन जोड़ी बैल हार जाऊंगा। कोई कहता, जरूरी नहीं पूरी की पूरी पाजेब भीगे, एक घुंघरी भी भीगी तो हार जीत होगी। जिसकी जैसी क्षमता थी वैसी आपस में शर्तें लगने लगी थीं। लोगों का उत्साह और बेसब्री चरम पर थी। कदम दर कदम बंजारन और बंजारा बांध की तरफ बढ़ रहे थे। बांध और बंजारन के बीच की दूरी जैसे जैसे घट रही थी, वैसे वैसे एक एक बालिस उत्साह, बेसब्री और शर्तों का लगाना बढ़ रहा था। लोगों की आंखें बंजारन के मत्स्य नैनों पर कम, पैरों की पाजेब और पाजेब में झूलती घुंघरियों पर टिकी थीं। सोने की पाजेब और चांदी की घुंघरी थी। बंजारन के हर कदम पर छम छम संगीत की बरसात थी। ओह 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 ओह, क्या उस संगीत की तारीफ में कहूँ और क्या सुनने वालों के कानों के नसीब के बारे में। और जब बंजारन ने बांध पर धरने को पहला कदम उठाया, थम गया संगीत। जाने कितनों की रुक गई सांस, कितनों की नहीं झपकी पलकें, कितने रह गए देखते औचक। पक्षी उड़ना छोड़ पेड़ों पर बैठ बंजारन के कदम को देखने लगे। चीलों को तो पेड़ों पर जगह ही नहीं मिले, वे आसमान में ठिठक करी बंजारन की पाजेब और बांध पर बहते पानी को देखने लगी। और जब बंजारन का उठा पहला कदम नीचे बांध पर धराया तो लगा कदम बांध की सतह पर नहीं बल्कि पानी की सतह पर ही रुक गया। वो कदम दर कदम आगे बढ़ने लगी। लोगों के मन में शर्तों पर लगे बैल, घोड़े, गाय, भैंस और जाने क्या क्या इधर उधर होने लगे। शोर, उत्साह और बेसब्र खुशी के झरने बहने लगे। बांध पर से बहते पानी की क्या मजाल कि पाजेब की एक घूंघरी को छू भी ले। पगधली को छूते नदी के शीतल पानी से बंजारन का रोआ रोआ खिलने लगा। हवा में रोज से झरती गजब की खुशबू बह चली। बंजारे की बाछें खिलकर आसमान हो गईं। भावना नदी के पानी में घुलकर बंजारन की पगधली को धोने लगी। बंजारन की पाजेब की घूंघरियों के स्वर में नदी गुनगुनाने लगी। कहते हैं ऐसा प्राणवान बंजारा फिर कभी नहीं हुआ, ऐसी बंजारन भी दोबारा नहीं जन्मी, ऐसा बांध भी फिर कहीं किसी ने नहीं बंधवाया। उस बंजारे और बंजारन के प्यार की निशानी वो बांध आज भी कायम है। बांध का नाम भी बंजारा बांध है। प्रेमी प्रेमिका बंजारा बांध की कस्में खाकर साथ निभाने के वादे करते हैं। बांध तो दुनिया भर की नदियों पर अब भी खूब बन रहे हैं, पर उन्हें प्रेमी बंजारे नहीं कंपनियां बना रही हैं। अब पाजेब और उसकी घूंघरी के न भीगने की बात छोड़ो, घर, खेत और गांव तक बचाना मुश्किल हो रहा। वाकई समय बदल रहा, विकास की गंगा बह रही दिन रात, डूब रहा सुख चैन। ये थी सत्यनारायण पटेल की कहानी पर पाजेब ना भीगे।
कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस URL kathapath.blogspot.in